का था, रूह वही रूप नया।
खौफनाक इमारत के भाग 5 में आपने सुना कि फोन पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इमरान टिप टॉप नाइट क्लब में वो बाकी के कागजात लेकर पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या है उन कागजातों में कि सारी कायनात उनके पीछे पड़ी है? इमरान ने उन कागजात में ऐसा क्या पाया जिसके लिए उसने 10,000 रुपए की फिरौती की मांग कर दी? क्या वाकई इमरान टिप टॉप नाइट क्लब वो सारे कागज लौटाने के लिए पहुंचा है? क्या है इमरान की चाल इस गिरोह को पकड़ने के लिए? सुनिए भाग 6 में। ठीक 8 बजे के करीब इमरान अपनी बगल में एक चमड़े का हैंडबैग दबाए टिप टॉप नाइट क्लब पहुंच गया। करीब करीब सारी मेजें भरी हुई थीं। इमरान ने बार के करीब खड़े होकर एक मजमे का जायजा लिया। आखिर उसकी नजरें एक मेज पर रुक गईं, जहां लेडी जहांगीर एक नौजवान औरत के साथ बैठी जर्द रंग की शराब पी रही थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेज के करीब पहुंचा। आहा माय लेडी, वो जरा झुक कर बोला। लेडी जहांगीर ने दाहिनी भौं चढ़ाकर उसे तीखी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराने लगी। हेलो इमरान, वो अपना दाहिना हाथ उठाकर बोली, तुम्हारे साथ वक्त बड़ा अच्छा गुजरता है। ये है मिस तस्नीम, खान बहादुर जफर तस्नीम की साहबजादी, और ये हैं अली इमरान, MSc PhD, इमरान ने बेवकूफों की तरह कहा। सलाम, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लहजा बेवकूफ बनाने का सा था। मुझे तो अफसोस हुआ। हाँ क्यों? लेडी जहांगीर ने हैरत ज़दा आवाज में पूछा। मैं समझता था कि शायद इनका नाम गुलफाम होगा। ये क्या बेहूदगी है, लेडी जहांगीर झुंझला गई। अरे सच कहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही मालूम हुआ था। तस्नीम इनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो किसी ऐसी लड़की का नाम लग रहा है जो जैसे कि तपेदिक की मरीज हो। तस्नीम बस नाम की ही कमर झुकी हुई हो। तुम शायद नशे में हो। लो और पियो, लेडी जहांगीर ने बात बनाई। फालूदा है? इमरान ने पूछा। डियर तस्नीम, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये बहुत मजाक करते हैं। ओहो इमरान, बैठो भी। अरे बुरा मानने की क्या बात है, मैं तो इन्हें गुलफाम के नाम से याद रखूंगा, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। तस्नीम बुरी तरह झेप रही थी और शायद अब उसे अपने रवैये पर अफसोस भी हो रहा था। अच्छा मैं चली, तस्नीम उठती हुई बोली। अरे मैं खुद चला, इमरान ने उठने का इरादा करते हुए कहा। ओह माय डियर्स, तुम दोनों बैठो, लेडी जहांगीर दोनों का हाथ पकड़कर झूमती हुई बोली। नहीं, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, तस्नीम ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाते हुए वहां से जाने के लिए उठते हुए कहा। और मैं तुम पर 1,000 काम कुर्बान कर सकता हूं, इमरान सीने पर हाथ रख कर बोला। ओफो बको मत, झूठे, तुम मुझे खामखा गुस्सा दिलाते हो। मैं तो तुम्हें पूजता हूं स्वीटी, मगर इस बुड्ढे की जिंदगी में। अरे तुम फिर मेरा मजाक उड़ाने लगे। अरे नहीं डियरेस्ट, मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी, नहीं दिल का लगा। बस, कभी कभी तुम बहुत ज्यादा चीप हो जाते हो। ओह आई एम सॉरी, इमरान ने कहा और उसकी नजरें करीब ही की एक मेज की तरफ उठ गई। वहां एक जानी पहचानी शक्ल का आदमी उसे घूर रहा था। इमरान ने हैंडबैग मेज पर से उठाकर बगल में दबा लिया। फिर अचानक सामने बैठा हुआ आदमी उसे आंख मारकर मुस्कुराने लगा। जवाब में इमरान ने बारी बारी उसे दोनों आंखें मार दी। लेडी जहांगीर अपने गिलास की तरफ देख रही थी और शायद उसके जहन में कोई रोमांटिक, इंतहाई रोमांटिक जुमला गुलबुला रहा था। मैं अभी आया, इमरान ने लेडी जहांगीर से कहा और उस आदमी की मेज पर चला गया। लाए हो? उसने आहिस्ता से कहा। अरे ये क्या रहा, तुम लाए हो? इमरान ने हैंडबैग की तरफ इशारा किया और बोला, हाँ हाँ। उस आदमी ने हैंडबैग पर हाथ रखते हुए कहा, तो ठीक है, इसे संभालो और चुपचाप खिसक जाओ, इमरान ने कहा। क्यों? वो उसे घूरता हुआ बोला, कैप्टन फयाज को मुझ पर शक हो गया है, हो सकता है कि उसने कुछ आदमी मेरी निगरानी के लिए लगा दिए हों। कोई चाल? हरगिज़ नहीं, आजकल मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अगर कोई चाल हुई तो तुम बचोगे नहीं, आदमी हैंडबैग लेकर खड़ा हो गया। यार, रुपए मैंने अपना मकबरा बनवाने के लिए नहीं हासिल किए हैं, इमरान ने आहिस्ता से कहा। फिर वो उस आदमी को बाहर जाते हुए देखता रहा, उसके होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। वो उस आदमी का दिया हुआ हैंडबैग संभालता हुआ फिर लेडी जहांगीर के पास बैठ गया। वो आदमी हैंडबैग लिए हुए जैसे ही बाहर निकला, क्लब के कार पार्क से दो आदमी उसकी तरफ बढ़े। क्या रहा? एक ने पूछा। मिल गया, बैग वाले ने कहा। कागजात हैं भी या नहीं? मैंने खोलकर नहीं देखा। अरे गधे हो, अरे वहां कैसे खोल सकता था? लाओ, इधर लाओ, उसने हैंडबैग अपने हाथ में लेते हुए कहा। आह, ये इतना वजनी क्यों है? उसने बैग खोलना चाहा, लेकिन उसमें ताला लगा हुआ था। चलो यहां से, यहां खोलने की जरूरत नहीं है, तीसरा बोला। बाहर पहुंचकर वो एक कार में बैठ गए। उनमें से एक कार ड्राइव करने लगा। शहर की सड़कों से गुजरकर कार एक वीरान रास्ते पर चल पड़ी। आबादी से निकल आने के बाद उन्होंने कार के अंदर रोशनी कर दी। उनमें से जो एक काफी उम्र दराज और अपने दोनों साथियों से ज्यादा ताकतवर मालूम होता था, एक पतले से तार की मदद से हैंडबैग का ताला खोलने लगा। जैसे ही हैंडबैग का फ्लैप उठाया, पिछली सीट पर बैठे दोनों आदमी एकदम से उछल पड़े। कोई चीज बैग में से उछलकर ड्राइवर की खोपड़ी से टकराई और कार सड़क के किनारे एक दरख्त से टकराते हुए बची। रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी, वरना कार के टकरा जाने में कोई कमी नहीं रह गई थी। तीन बड़े बड़े मेंढक कार में उछल रहे थे। बूढ़े आदमी के मुंह से एक मोटी सी गाली निकली और दूसरा हंसने लगा। शट अप, तुम गधे हो, तुम्हारी बदौलत, बूढ़ा गले के पूरे जोर से चीखा। जनाब, मैं क्या करता? मैं उसे वहां कैसे खोल सकता था? इसका भी तो ख्याल था ना कि कहीं पुलिस पीछे ना लगी हो।
अरे बकवास मत करो,
मैं पहले ही इत्मीनान कर चुका था कि पुलिस का वहां कोई आदमी नहीं है। क्या तुम मुझे मामूली आदमी समझते हो? अब इस लौंडे की मौत आ गई है।
अरे तुम गाड़ी रोको,
कार रुक गई। बूढ़ा थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, क्लब में उसके साथ और कौन था? एक खूबसूरत सी औरत थी, दोनों शराब पी रहे थे।
गलत, इमरान शराब नहीं पीता।
अरे पी रहा था जनाब, बूढ़ा फिर से सोच में पड़ गया।
चलो वापस चलो, वो कुछ देर बाद बोला, मैं उसे वहीं क्लब में मार डालूंगा, वापस चलो।
कार फिर शहर की तरफ मुड़ गई। मेरा ख्याल है कि वो अब तक मर चुका होगा, बूढ़े के करीब बैठे हुए आदमी ने कहा।
नहीं, वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, बूढ़ा झुंझला कर बोला। उसने हमें धोखा दिया है तो खुद भी गाफिल ना होगा।
तब तो वो क्लब ही से चला गया होगा।
बहस मत करो, मैं उसे ढूंढ कर मारूंगा, चाहे वो अपने घर में ही क्यों ना हो, बूढ़े ने गरज कर कहा।
इमरान चंद लम्हे बैठा रहा, फिर उठकर तेजी से बाहर निकल गया। उसने क्लब के बाहर एक कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनी और फिर वो वापस अंदर आ गया। अरे कहां भागते फिर रहे हो इमरान? लेडी जहांगीर ने पूछा, उसकी आंखें नशे से बोझल हो रही थी। जरा खाना हजम कर रहा हूं, इमरान ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। लेडी जहांगीर आंखें बंद करके हंसने लगी। इमरान की नजरें बदस्तूर घड़ी पर जमी रहीं। वो फिर उठा और टेलीफोन बूथ की तरफ जाने लगा। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए और माउथपीस में बोला,
हेलो हेलो, सुपर फयाज, मैं इमरान बोल रहा हूं, बस अब रवाना हो जाओ।
रिसीवर रख कर वो फिर हॉल में आया, लेकिन इस बार लेडी जहांगीर के पास नहीं बैठा। चंद लम्हे खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर एक ऐसी मेज पर जा बैठा जहां तीन आदमी पहले से ही बैठे हुए थे और ये तीनों उसके परिचित थे, इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। शायद 15 मिनट तक इमरान उनके साथ कहकहे लगाता रहा, लेकिन इस दौरान बार बार उसकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। अचानक उसे दरवाजे में वो बूढ़ा दिखाई दिया जिससे उसने कुछ दिन पहले कागजात वाला हैंडबैग छीना था। इमरान और ज्यादा डूबकर गुफ्तगू करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने अपने दाहिने कंधे पर किसी चीज की चुभन महसूस की। उसने कनखियों से दाहिनी तरफ देखा, बूढ़ा उससे लगा हुआ खड़ा था। उसका बायां हाथ कोट की जेब में था और उसी जेब में रखी हुई कोई सख्त चीज इमरान के कंधे में चुभ रही थी। इमरान को समझने में कठिनाई ना हुई कि वो रिवॉल्वर की नली ही हो सकती है। इमरान साहब, क्या आप चंद मिनट के लिए बाहर तशरीफ ले चलेंगे? बूढ़ा बड़ी विनम्रता से बोला। आहा, चचा जान, चचा जान, इमरान चहक कर बोला। जरूर जरूर, मगर मुझे आपसे शिकायत है, इसलिए आपको भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप चलिए तो सही, मुझे उस गधे की हरकत पर अफसोस है, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। इमरान खड़ा हो गया, लेकिन अब रिवॉल्वर की नाल उसके पहलू में चुभ रही थी। वो दोनों बाहर आए, फिर जैसे ही वे पार्क में पहुंचे बूढ़े के दोनों साथी भी पहुंच गए।
कागजात कहां हैं?
बूढ़े ने इमरान का कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। पार्क में सन्नाटा था। अचानक इमरान ने बूढ़े का दायां हाथ पकड़कर थोड़ी के नीचे एक जोरदार घूंसा रसीद किया। बूढ़े का रिवॉल्वर इमरान के हाथ में था और बूढ़ा लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि उसके साथियों ने उसे संभाल लिया। मैं कहता हूं कि वे 10,000 कहां हैं? इमरान ने चीख कर कहा। अचानक मेहंदी की बाढ़ के पीछे से 8-10 आदमी उछलकर उन तीनों पर आ पड़े और फिर एक खतरनाक कश्मकश शुरू हो गई। वो तीनों बुरी तरह लड़ रहे थे। फयाज, वो दाढ़ी वाला, इमरान ने चीख कर कहा, लेकिन दाढ़ी वाला उछल कर भागा। वो मेहंदी की बाढ़ फलांगने ही वाला था कि इमरान के रिवॉल्वर से शोला निकला, गोली टांग में लगी और बूढ़ा मेहंदी की बाढ़ में फंस कर रह गया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इमरान रिवॉल्वर फेंक कर अपना मुंह पीटने लगा। वे दोनों पकड़े जा चुके थे। फयाज बूढ़े की तरफ झपटा जो अब भी भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। फयाज ने टांग पकड़कर उसे मेहंदी की बाढ़ से घसीट लिया। ये कौन? फयाज ने उसके चेहरे पर रोशनी डाली। फायर की आवाज सुनकर पार्क में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। बूढ़ा बेहोश नहीं हुआ था, वो किसी जख्मी सांप की तरह बल खा रहा था। इमरान ने झुककर उसकी नकली दाढ़ी नोच डाली।
है? सर जहांगीर?
फयाज तकरीबन चीख पड़ा। सर जहांगीर ने फिर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन इमरान की ठोकर ने उन्हें उठने नहीं दिया। हाँ, सर जहांगीर, एक गैर मुल्क का जासूस, कौम फरोश, गद्दार, इमरान बड़बड़ाया। दूसरे दिन कैप्टन फयाज इमरान के कमरे में बैठा उसे ताज्जुब की नजरों से घूर रहा था। इमरान बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मुझे खुशी है कि एक बड़ा गद्दार और वतन फरोश मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचा। भला कौन सोच सकता था कि सर जहांगीर जैसा इज्जतदार और नेक आदमी भी किसी गैर मुल्क का जासूस हो सकता है। मगर वो कब्र का मुजाविर कौन था? फयाज ने बेसब्री से पूछा। मैं बताता हूं, लेकिन बीच में टोकना मत। वो बेचारा अकेले ही ये सब कुछ कर लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसका खेल बिगाड़ दिया। पिछली रात वो मुझे मिला था, उसने पूरी दास्तान दोहराई। अब शायद हमेशा के लिए छिप गया है, उसकी बड़ी जबरदस्त हार हुई है, अब वो किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहता। हाँ, मगर वो है कौन? अयाज। चौंको नहीं, मैं बताता हूं। यही अयाज वो आदमी था जो फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी के साथ कागजात समेत सफर कर रहा था। आधे कागजात उसके पास थे और आधे सेक्रेटरी के पास। उन पर डाका पड़ा, सेक्रेटरी मारा गया और अयाज किसी तरह बच गया। मुजरिमों के हाथ सिर्फ आधे कागजात लगे। अयाज फॉरेन ऑफिस में सीक्रेट सर्विस का आदमी था, वो बच गया, लेकिन उसने ऑफिस को रिपोर्ट नहीं दी। वो दरअसल अपने जमाने का माना हुआ आदमी था, इसलिए इस शिकस्त ने उसे मजबूर कर दिया कि वो मुजरिमों से आधे कागजात वसूल किए बगैर ऑफिस में न पेश हो। वो जानता था कि आधे कागजात मुजरिमों के किसी काम के नहीं हैं। वो बाकी आधे कागजात के लिए उसे तलाश जरूर करेंगे। कुछ दिनों के बाद उसने मुजरिमों का पता लगा लिया, लेकिन उनके सरगना का सुराग ना मिल सका। वो दरअसल सरगना को ही पकड़ना चाहता था। दिन गुजरते गए, लेकिन अयाज को कामयाबी ना मिली। फिर उसने एक नया जाल बिछाया। उसने वो इमारत खरीद ली और उसमें अपने एक वफादार नौकर के साथ जिंदगी बसर करने लगा। उस दौरान उसने अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए एक कब्र बनाई और वो सारा मैकेनिज्म तरतीब किया। अचानक उसी जमाने में उसका नौकर बीमार होकर मर गया। अयाज को एक दूसरी तरकीब सूझी। उसने नौकर पर मेकअप करके उसे दफन कर दिया और उसके भेस में रहने लगा। इस कार्रवाई से पहले उसने वो इमारत कानूनी तौर पर जज साहब के नाम कर दी और सिर्फ एक कमरा रहने दिया। उसके बाद ही उसने इस इमारत की तरफ मुजरिमों का ध्यान खींचना शुरू किया। कुछ ऐसे तरीके अपनाए कि मुजरिमों को यकीन हो गया कि मरने वाला सीक्रेट सर्विस ही का आदमी था और बाकी कागजात वो उसी इमारत में कहीं छुपा कर रख गया है। अभी हाल ही में उन लोगों की पहुंच उस कमरे तक हुई जहां हमने लाशें पाई। दीवार वाले खुफिया खाने में सचमुच कागजात थे। उसका इशारा भी उन्हें अयाज की तरफ से ही मिला था। जैसे ही कोई आदमी खाने वाली दीवार के नजदीक पहुंचता, अयाज कब्र के पत्थर के नीचे से डरावनी आवाजें निकालने लगता और दीवार के करीब पहुंचा हुआ आदमी सहम कर दीवार से चिपक जाता। उधर अयाज कब्र के अंदर से मैकेनिज्म को हरकत लाता और दीवार से तीन छुरियां निकलकर उसकी कमर में धंस जाती। ये सब उसने सिर्फ सरगना को पकड़ने के लिए किया था, लेकिन सरगना मेरे हाथ लगा। अब अयाज शायद जिंदगी भर अपने बारे में किसी को बता नहीं सकेगा। और कैप्टन फयाज, मैंने उससे वादा किया है कि उसका नाम केस के दौरान कहीं ना आने पाएगा, समझे? और तुम्हें मेरे वादे का ख्याल करना पड़ेगा। तुम अपनी रिपोर्ट इस तरह बनाओ कि इसमें कहीं एक आंख वाली महबूबा का नाम भी ना आने पाए। वो तो ठीक है, लेकिन वो 10,000 रुपये कहाँ हैं जो तुमने सर जहांगीर से वसूल किए थे? फयाज जल्दी से बोला। हाँ ठीक है, आधा आधा बांट लें। क्यों? इमरान अपनी आंखें फिराकर बोला। अरे क्या बकवास है, दो, उसे मैं सरकारी तहवील में दे दूंगा, फयाज ने कहा। अरे हरगिज नहीं, इमरान ने झपट कर चमड़े का वो हैंडबैग मेज से उठा लिया जो उसे पिछली रात सर जहांगीर के एक आदमी से मिला था। फयाज ने उससे हैंडबैग छीन लिया और फिर उसे खोलने लगा। खबरदार, होशियार, इमरान ने चौकीदारों की तरह हांक लगाई, लेकिन फयाज हैंडबैग खोल चुका था और फिर जो उसने अरे बाप रे कहकर छलांग लगाई तो सीधा एक सोफे पर जाकर ही पनाह ली। हैंडबैग से एक स्याह रंग का सांप निकलकर फर्श पर रेंग रहा था।
अरे खुदा तुझे गारत करे इमरान के बच्चे कमीने,
फयाज सोफे पर खड़ा होकर दहाड़ा। सांप फन काढ़कर सोफे की तरफ लपका। फयाज ने चीख मारकर दूसरी कुर्सी पर छलांग लगाई। कुर्सी उलट गई और वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। इस बार अगर इमरान ने फुर्ती से अपने जूते की एड़ी सांप के सर पर न रख दी होती तो उसने फयाज को डस ही लिया होता। सांप का बाकी जिस्म इमरान की पिंडली से लिपट गया था और उसे महसूस होने लगा था जैसे उसकी पिंडली की हड्डी टूट जाएगी। ऊपर से फयाज उस पर घूसों और थप्पड़ों की बारिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दोनों से अपना पीछा छुड़ाया।
अरे तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, दीवाने वैश्य कहीं के,
फयाज हांफता हुआ बोला।
मैं क्या करूं जाने मन, खैर अब तुम इसे सरकारी तहवील में दे दो। अगर कहीं मैं रात को जरा भी चूक गया होता ना तो उसने मुझे अल्लाह मियां की तहवील में पहुंचा दिया था।
क्या सर जहांगीर?
हाँ,
हम दोनों में मेढकों और सांपों का तबादला हुआ था, इमरान ने कहा और अपने खास अंदाज में च्युइंगम चबाने लगा। उसके चेहरे पर फिर वही पुरानी हिमाकत दिखाई देने लगी थी। आप सुन रहे थे खौफनाक इमारत का आखिरी भाग। इस कहानी को लिखा था इब्ने सफी ने और आप तक इसे पहुंचाया नैनी दीक्षित ने गाथा के जरिए।